नमस्ते, मैं आराफ हूँ। 99 ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। रिचर्ड मॉन्सन हेफल द्वारा संपादित पुस्तक अ पिथ्रोपाइस थिंग्स एवरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट शुड नो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर छोटे स्वतंत्र निबंधों का संकलन है। इसमें अनेक अनुभवी आर्किटेक्ट अपने काम से निकले सिद्धांत साझा करते हैं, इसलिए यह किसी एक पद्धति, भाषा, विक्रेता, उत्पाद या कठोर वास्तु प्रक्रिया की पाठ्य पुस्तक नहीं है। इसका विषय तकनीकी निर्णयों के साथ उनके व्यावसायिक, मानवीय और संगठनात्मक परिणाम है। पुस्तक का केंद्रीय आग्रह है कि आर्किटेक्ट केवल उच्च स्तरीय डिजाइन बनाने वाला विशेषज्ञ नहीं, बल्कि व्यवसाय, ग्राहकों, डेवलपरों और संचालन संबंधी वास्तविकताओं के बीच समझ पैदा करने वाला व्यक्ति है। छोटे लेखों की शैली पाठक को किसी क्रमबद्ध सिद्धांत के बजाय संक्षिप्त व्यावहारिक संकेत देती है। इनमें जटिलता घटाना, वास्तविक उपयोग से सीखना, डेटा की सुरक्षा, प्रदर्शन पर समय रहते विचार, अनुमान, संवाद और टीम को सक्षम बनाना जैसे विषय आते हैं। अलग अलग लेखकों के कारण दृष्टिकोण विविध है और कुछ विचार एक दूसरे से मिलते भी हैं। फिर भी यही बहुस्वरता बताती है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में सही उत्तर अक्सर संदर्भ, सीमाओं और लोगों की जरूरतों पर निर्भर करता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आर्किटेक्ट की भूमिका व्यवसाय और तकनीक के बीच सक्रिय सेतु है। पुस्तक आर्किटेक्ट की पहचान को केवल तकनीकी विशेषज्ञता तक सीमित नहीं रखती। इसके अनुसार आर्किटेक्ट को उन तकनीकों और प्लेटफॉर्मों की समझ चाहिए जिन पर संगठन काम करता है, लेकिन उतनी ही जरूरी समझ उस व्यवसाय की है जिसे सॉफ्टवेयर सेवा देता है। यह संतुलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी रूप से आकर्षक समाधान भी असफल हो सकता है यदि वह ग्राहक की प्राथमिकताओं, संचालन लागत, नियामकीय जरूरतों, समय सीमा या बाजार की वास्तविकता से कट जाए। पुस्तक में ग्राहक की दीर्घकालिक जरूरत को अपने अल्पकालिक हित से ऊपर रखने का विचार इसी जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। इस दृष्टि में वास्तु निर्णय का अर्थ केवल घटकों का चित्र बनाना नहीं है। आर्किटेक्ट को यह स्पष्ट करना होता है कि किसी विकल्प का लाभ, जोखिम, लागत और भविष्य में परिवर्तन पर क्या असर पड़ेगा। गैर तकनीकी हितधारकों के लिए यह बात सरल भाषा में रखनी पड़ती है, जबकि डेवलपरों को पर्याप्त तकनीकी दिशा और निर्णय का कारण चाहिए। इसलिए संवाद कोई सहायक कौशल नहीं, वास्तुकर्म का मुख्य उपकरण है। पुस्तक इस बात से भी सावधान करती है कि आर्किटेक्ट अपना बायोडाटा आवश्यकताओं के आगे न रखे। नई तकनीक, जटिल ढांचा या व्यक्तिगत पसंद तभी उपयोगी है जब वह समस्या को बेहतर हल करे। इस कसौटी से आर्किटेक्चर प्रतिष्ठा का प्रदर्शन नहीं, संगठन के लिए उत्तरदायी निर्णय प्रक्रिया बनता है। दूसरा, आवश्यक और आकस्मिक जटिलता को अलग पहचान कर सरलता चुनना। पुस्तक का एक बुनियादी वैचारिक अंतर आवश्यक जटिलता और आकस्मिक जटिलता के बीच है। आवश्यक जटिलता उस समस्या में अंतर्निहित कठिनाई है जिसे हटाया नहीं जा सकता, जैसे जटिल व्यावसायिक नियम, वास्तविक दुनिया की अनेक अवस्थाएं या विश्वसनीयता की अनिवार्य मांग। इसके विपरीत आकस्मिक जटिलता उन अतिरिक्त परतों, अमूर्तताओं, उपकरणों और प्रक्रियाओं से आती है जिन्हें हम समाधान बनाते समय जोड़ देते हैं। यह अंतर आर्किटेक्ट को हर कठिनाई को अपरिहार्य मान लेने से रोकता है। बड़े सिस्टमों में आकस्मिक जटिलता हटाना आसान नहीं होता क्योंकि कई अतिरिक्त हिस्से कभी किसी जोखिम को संभालने के लिए जोड़े गए होते हैं। इसलिए पुस्तक सरलता को लापरवाही या सुविधा त्याग के रूप में नहीं पेश करती। सही प्रश्न यह है कि कौन सा भाग वास्तविक समस्या हल कर रहा है और कौन सा केवल पुराने अनुमान, संभावित भविष्य या संगठनात्मक आदत का बोझ है। संदर्भ को प्रधान मानने का विचार इसी जांच को दिशा देता है। सादगी पहले, सामान्यीकरण बाद में और उपयोग पहले, पुनः उपयोग बाद में का सिद्धांत इस दृष्टि को व्यवहार में बदलता है। अनुमानित भविष्य के लिए अत्यधिक सामान्य ढांचा बनाने पर विकल्प, विन्यास और निर्भरताएं बढ़ती हैं। वास्तविक उपयोग से निकला पुनः उपयोग अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि तब समानता और परिवर्तनशीलता दोनों देखी जा चुकी होती है। इस तरह पुस्तक न्यूनतम लेकिन पर्याप्त डिजाइन की अनुशंसा करती है। तीसरा, भव्य दृष्टि रखें। पर क्रमिक निर्माण और वास्तविक उपयोग से वास्तुकला विकसित करें। पुस्तक का एक प्रमुख संदेश है कि आर्किटेक्ट के पास दीर्घकालिक दिशा होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में पूरे भविष्य का कठोर और भव्य डिजाइन तय कर देना जोखिमपूर्ण है। बड़े निर्माण को एक ही अंतिम घटना की तरह देखने के बजाय छोटे, ठोस और गुणवत्तापूर्ण आधार से सिस्टम को विकसित करना अधिक व्यावहारिक है। इससे परियोजना को वास्तविक उपयोग, बदलती जरूरतों और तकनीकी सीख के आधार पर दिशा बदलने की क्षमता मिलती है। इसका अर्थ जल्दबाजी में नमूना बनाकर बाद में फेंक देना नहीं है। आरंभिक हिस्से भी उत्पादन स्तर की गुणवत्ता, परीक्षण और संचालन योग्यता के साथ बनाए जाने चाहिए। यह विचार सकारात्मक सामान्यीकरण की आलोचना से जुड़ा है। जब टीम उन संभावनाओं के लिए डिजाइन करती है जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई, तो समाधान अनुमान पर टिक जाता है। बाद में अनुपयोगी विकल्प, अनावश्यक विस्तार बिंदु और हटाने में कठिन निर्भरताएं बचती है। पुस्तक काम कर रहे कोड से विकसित ढांचों को सैद्धांतिक रूप से ऊपर से थोपे गए ढांचों पर प्राथमिकता देती है, क्योंकि काम करता कोड वास्तविक सीमाओं को उजागर करता है। क्रमिक तैनाती का व्यावसायिक लाभ भी है। छोटे हिस्से जल्दी मूल्य दे सकते हैं, प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और जोखिम को सीमित कर सकते हैं। आर्किटेक्ट का काम इसलिए भविष्य का पूर्ण नक्शा घोषित करना नहीं, बल्कि ऐसी सीमाएं, इंटरफेस और गुणवत्ता मानक बनाना है जिनके भीतर सिस्टम सुरक्षित रूप से बदल सके। चौथा, डेटा प्रदर्शन और पैटर्न को आरंभिक वास्तु निर्णय मानना। पुस्तक डेटा मॉडल को आरंभ से गंभीर वास्तु विषय मानती है। उपयोगकर्ता अंतरफलक और व्यावसायिक नियम अपेक्षाकृत जल्दी बदल सकते हैं, लेकिन एकत्रित डेटा की संरचनाएं और उनके संबंध अक्सर लंबे समय तक बने रहते हैं। जब गलत या अधूरा डेटा मॉडल बहुत आगे तक चला जाता है, तब मौजूदा डेटा को नए स्कीमा में स्थानांतरित करना समय लेने वाला, त्रुटिपूर्ण और जोखिम भरा हो सकता है। डेटाबेस को मूल्यवान डेटा का अंतिम रक्षक मानने का विचार बताता है कि केवल एप्लीकेशन स्तर की जांच पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। प्रदर्शन पर जल्दी विचार करना भी इसी दूरदर्शिता का भाग है। इसका मतलब हर जगह समय पूर्व सूक्ष्म अनुकूलन नहीं, बल्कि उन वास्तु चयनों को समय पर समझना है जिनका बाद में बदलना महंगा होता है, जैसे डेटा प्रवाह, नेटवर्क सीमाएं, भंडारण, समवर्ती उपयोग और विस्तार की जरूरत। लोगों की उत्पादकता भी लागत और समय सारिणी को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए ऐसा ढांचा जो विकास और परीक्षण को कठिन बनाता है, स्वयं एक प्रदर्शन समस्या बन सकता है। पुस्तक उद्यम एप्लीकेशन और एकीकरण पैटर्नों की उपयोगिता स्वीकार करती है, जिनमें इवेंट ड्रिवन, सर्विस ओरिएंटेड, रिसोर्स ओरिएंटेड और पाइपलाइन वास्तुकला शामिल हैं। लेकिन पैटर्न तैयार उत्तर नहीं है। आर्किटेक्ट को उनका उद्देश्य, सीमाएं और लागू होने का संदर्भ समझना चाहिए। एंटी पैटर्नों की पहचान भी जरूरी है, क्योंकि दोहराई जाने वाली पर असफल प्रक्रियाएं अक्सर परिचित लगने के कारण स्वीकार कर ली जाती हैं। अंत में, नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, टीम को निर्णय लेने योग्य बनाना है। इस संकलन में वास्तुकार की मानवीय जिम्मेदारी बार बार उभरती है। अच्छे निर्णय तब भी निष्प्रभावी हो सकते हैं जब टीम उन्हें समझती नहीं, उन पर भरोसा नहीं करती या उन्हें लागू करने की क्षमता नहीं रखती। इसलिए आर्किटेक्ट को केवल मानक घोषित करने वाला नियंत्रक नहीं, बल्कि स्पष्टता देने वाला नेता होना चाहिए। समस्या दिखने पर व्यक्ति को दोष देने के बजाय टीम को साथ बुलाना, समस्या और उसके संभावित परिणाम समझाना तथा व्यवहार्य समाधान या उपाय प्रस्तुत करना इस भूमिका का व्यावहारिक रूप है। पुस्तक संचार को केंद्रीय मानती है, क्योंकि वास्तु निर्णय कई समूहों को प्रभावित करते हैं। डेवलपरों को सीमाएं और तर्क चाहिए, प्रबंधकों को लागत तथा जोखिम का अर्थ और हितधारकों को ग्राहक मूल्य तथा विकल्पों का प्रभाव। अस्पष्टता अक्सर तकनीकी कमजोरी से अधिक नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अलग अलग लोग एक ही निर्णय को अलग तरह से लागू करने लगते हैं। इसलिए संक्षिप्त, ईमानदार और संदर्भयुक्त संवाद वास्तु गुणवत्ता का हिस्सा है। अनुमान और योजना भी नेतृत्व से जुड़े हैं। अवास्तविक समय सीमा पूरी करने के लिए परीक्षण जैसे कार्य हटाना या लगातार अतिरिक्त समय मांगना वास्तविक समाधान नहीं है। पुस्तक की चेतावनी है कि सब कुछ एक साथ नहीं पाया जा सकता। आर्किटेक्ट को दायरा, समय, गुणवत्ता, जोखिम और संसाधनों के बीच स्पष्ट समझौते सामने रखने चाहिए। इससे टीम को दबाव छिपाने के बजाय सचेत विकल्प चुनने का अवसर मिलता है। निष्कर्ष में, W5 थिंग्स एवरी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट शुड नो उन डेवलपरों। तकनीकी लीडों, नए आर्किटेक्टों और अनुभवी आर्किटेक्टों के लिए उपयोगी है जो अपने काम को केवल तकनीकी डिजाइन से व्यापक रूप में देखना चाहते हैं। विशेषकर उन पाठकों को इससे लाभ होगा जिन्हें छोटे स्वतंत्र लेखों के माध्यम से विचारों की जांच करना पसंद है। इसे किसी विशिष्ट तकनीक लागू करने की मार्गदर्शिका, विस्तृत पैटर्न संदर्भ पुस्तक या क्रमबद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की तरह पढ़ना उचित नहीं होगा। इसकी शक्ति संक्षिप्त सिद्धांतों में है जो पाठक को अपने संगठन, सिस्टम और निर्णयों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह वास्तुकर्म के उन पहलुओं को सामने लाती है जो अक्सर तकनीकी चर्चाओं में पीछे छूट जाते हैं, जैसे हितधारकों से संवाद, टीम की क्षमता, ग्राहक के दीर्घकालिक हित, अनुमान की ईमानदारी और अनावश्यक जटिलता का नियंत्रण। साथ ही डेटा मॉडल प्रदर्शन, पैटर्न और क्रमिक विकास जैसे तकनीकी विषयों को संगठनात्मक परिणामों से जोड़ती है। पाठक किसी एक लेख को बैठक, डिजाइन समीक्षा या परियोजना की समस्या के संदर्भ में लेकर विचार कर सकता है। इसी बहु लेखक लघु निबंध प्रारूप के कारण यह समान श्रेणी की एकल लेखक पुस्तकों से अलग है। इसमें एक ही कठोर पद्धति का निरंतर तर्क नहीं मिलता, बल्कि अनुभवी पेशेवरों की कई आवाजें मिलती है। इसका परिणाम कभी कभी दोहराव और असमान गहराई भी है, पर यही विविधता इसे वास्तुकार की भूमिका पर व्यापक चिंतन संग्रह बनाती है। सर्वोत्तम उपयोग के लिए इसे चयनात्मक रूप से पढ़ें, उपयोगी सिद्धांतों पर टीम के साथ चर्चा करें और हर सलाह को अपने संदर्भ की सीमाओं के विरुद्ध परखें। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रिचर्ड मॉन्सन हैफिल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।